नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैंटो 7 चैप्टर टेक्स्ट 42। हरे कृष्ण। एषा ब्रह्मण्या देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारा कथा पुण्या आदो यदि यदि आया बोल रही है ये सोच रही है एशा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारा कथा पुण्या ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारा कथा पुण्या वदो यदि देतयो एष ब्रह्मण्य देवस्य महात्मनः अवतारा कथा पुण्या वदो यदि देतयः
एषा यह सब ब्रह्मण्य देवस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो समस्त ब्राह्मणों द्वारा पूजित है कृष्णस्य आदि भगवान कृष्ण का च भी महात्मना परमात्मा अवतार कथा उनके अवतार की कथाएं पुण्या पवित्र शुद्ध करने वाली वधा मारा जाना वध यत्र जिसमें आदि प्रारंभिक कल्प में दैत्ययो दोनों असुरों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दो असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। तात्पर्य विभिन्न अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या गोविंद के अंश है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेशु दुर्लभम व दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो भी वे आदि है। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष है फिर भी वे सदा नवयुवक जैसे प्रतीत होते हैं। भगवान ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूप जैसे वेदों के शैक्षणिक ज्ञान से नहीं समझे जा सकते, किंतु वे शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए सदैव प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता 5:33 ब्रह्म संहिता में अवतारों का वर्णन है। निसंदेह समस्त प्रमाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन हुआ है। कोई भी मनुष्य अवतार नहीं बन सकता, यद्यपि कलयुग में यह फैशन जैसा हो गया है। चूंकि शास्त्रों में अवतारों का वर्णन है, अतएव किसी ढोंगे अवतार को स्वीकार करने का खतरा मोल लेने के पूर्व शास्त्रों को देखना चाहिए। शास्त्रों में सर्वत्र कहा गया है कि कृष्ण आदि भगवान है और उनके असंख्य अवतार है। ब्रह्म संहिता में अन्यत्र कहा गया है, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन। राम, नरसिंह तथा अन्य अनेक एक के बाद एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार है। कृष्ण के बाद बलराम, बलराम के बाद संकर्षण और तब अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण, तब फिर पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। ये सभी अवतार है। मनुष्यों को इन अवतारों के विषय में सुनना चाहिए। ऐसे अवतारों के वर्णन अवतार कथाएं कहलाती है। इन कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन पूर्णतः पवित्र होता है। श्रीमताम स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। जो इन्हें सुनता तथा इनका कीर्तन करता है वह पुण्य भौतिक कलमशों से मुक्त बन सकता है। जब भी अवतारों का प्रसंग आता है तो धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना होती है और कृष्ण के विरोधी असुर मारे जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सारे विश्व में दो उद्देश्यों से फैल रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण की स्थापना करना तथा उन ढोंगियों का वध करना जो मिथ्या ही अपने को अवतार कहते हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचारकों को अपने मन में यह संकल्प बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए और उन असुरों का वध करना चाहिए जो बड़ी ही निपुणता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपमानित करते हैं। यदि हम नरसिंहदेव तथा प्रहलाद महाराज की शरण ले ले तो कृष्ण के विरोधी असुरों को मारना और इस तरह पुनः कृष्ण वचर्स्व को स्थापित करना आसान हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परमेश्वर है, आदि भगवान है, प्रहलाद महाराज हमारे गुरु हैं और कृष्ण हमारे आराध्य इष्ट है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि हम पर प्रहलाद महाराज और उनके साथ नरसिंह देव की कृपा हो जाए तो हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन नितांत सफल हो जाएगा। असुर हिरण्यकश्यपु के पास स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास करने के अनेक साधन थे, किंतु प्रहलाद महाराज ने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किए जाने और धमकाए जाने पर भी अपने शक्ति संपन्न पिता को ईश्वर मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हमें प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलते हुए ऐसे सारे धूर्तों को अस्वीकार करना होगा जो अपने ईश्वर होने का स्वांग रचते हैं। हमें कृष्ण तथा उनके अवतारों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अनुवाद पीछे से दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दो असुरों का भी वध का वर्णन किया गया है।
ओम ज्ञान त्रिवेदस्य ज्ञानञ्जनाशाख्य चक्षुर्मिलितेन श्री चैतन्य मनोविष्टम् वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपां सगतम् श्री राधा कृष्ण पदां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कृष्ण सप्त कृष्ण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सूर्यदेवी वंशा का पात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद हे मान्य देवस्थान कृष्ण से चा मत बना उत्साह कथा पुण्य मधु इत्यादि तो इस श्लोक का चार नारद मुनि कर रहे हैं और इस अध्याय में आप प्रहलाद महाराज की महिमा पीछे सुनाई दे रहा है। प्रहलाद महाराज कौन है? ऊंचे कोटि के भक्त हैं और प्रहलाद महाराज अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े, केवल एक कारण था। क्या था? गहरा आकर्षण परम भगवान के प्रति। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा भगवत में प्राप्त करते हो और प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। और क्या था उनका दोष? एक ही दोष था, आकर्षण था किसके प्रति? परम भगवान के प्रति। तो प्रहलाद महाराज शिक्षा भगवत में प्राप्त करते हो। तो आज के इस श्लोक में अवतारों का वर्णन है। अवतार और अवतार के विषय में क्या, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से प्रकट होता है वो है अवतार। शायद आपको पता हो, कई साल पहले हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी, क्या नाम था? अवतार। ओ, ओ, ये मैं सोचिए वो फिल्म का अवतार का वर्णन है। मछली अवतार के नहीं, अवतार मतलब क्योंकि प्रकट होता है कहाँ से? मान के देवी धाम से। वो आज के इस का क्या आप पढ़ते हो कि इस श्लोक में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है। और अवतार का मतलब है क्योंकि प्रकट होता है भगवान के देव धाम से। तो आज के वातावरण में आप एक व्यक्ति को मिलते हो, ये कहते हैं हम अवतार हैं। अवतार का असली अर्थ क्या है? जो प्रकट होता है पृथ्वी पर कहाँ से? भगवान के धाम से। और भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्र में। और आज के श्लोक का अनुवाद ये है कि परम भगवान की लीलाएं हैं, उनके अनेक विस्तार हैं। पीछे सुनाई दे रहा है? तो एक श्लोक में श्लोक में ये कहा जा रहा है पर भगवान के अनेक अवतार है, आप भगवान के अवतारों का वर्णन पूरे रूप से वर्णन नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य में उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार सागर के किनारे में आप खड़े होते हो तो कितनी लहरें आती है आप गिन सकते हो, इसी प्रकार भगवान के अनेक अवसारों का वर्णन करना कठिन है। यहाँ कहा जा रहा है कि परम भगवान के अनेक अवसार हैं और भगवान अनेक अवसारों के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट हुए किस लिए, तो असुरों का वध करने के लिए। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए भगवान के अनेक हजारों हजारों अवसार हैं और जो अवसार है प्रकट होता है कहाँ से, वहां के दिव्य धाम से आता है। किस लिए, पवित्र आया साधु नाम मेरे चरित्र समस्त पदार्थ आया वहां क्यों प्रकट होते धर्म की स्थापना करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था वो तो अपनी माता के घर में थे। प्रहलाद के पिता उनके अध्यापक अंदर मरकर ये नहीं समझ पा रहे थे प्रहलाद का दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है और पुणे प्रहलाद के जो अध्यापक है वो डांटा था, तुम लोग सावधानी से कार्य नहीं कर रहे इसलिए लगता है कि वैष्णव पेश बदल कर आते हैं और मेरे बेटे को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें दोष मत दो, हम ब्राह्मण हैं, मैं खुद ही समझ आता प्रहलाद में उपदेश कौन दे रहा। प्रहलाद ने प्राप्त किया था कि दिव्य क्या अंदाजी। तो भगवान के अनेक अवसर हैं, यहाँ प्रभु जी ब्रह्म संहिता के किसी श्लोक का वर्णन कर, कौन सा ये श्लोक, अद्वैत अच्युत बना दिए नंद रूपा अद्यम पुराण पुरुषम विरम्यम विदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्त गोविंद माली पुरुषम महाम। इसमें क्या कहा जा रहा है, भगवान के अवतारों का वर्णन है और क्या गुण होते हैं उनमें, अद्वैत में अच्युत बना दिए अनंत रूपम भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं। अच्युता अच्युता का क्या है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, भगवान अपने आपको अच्युत भगवान को समझना एहसान है और करण भी छुरा जो कि कभी भी गलती नहीं करता। साधारण व्यक्ति अनेक प्रकार की कमियां हैं पर भगवान में कोई कमी है छुता। आज भी हम उनकी गीता को पढ़ते हैं जो हजारों साल पूर्व भगवान ने उपदेश दिया था और हमें ऐसे नहीं लगता, कई बार हम सुन बैठे भगवान जो शिक्षा है उसमें कोई गलती नहीं। चूता अनंत रूपम भगवान अपने आप को पकड़ करते हैं अनेक रूपों में असंख्य, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। भगवान पशु के रूप में भी प्रकट हो सके, जैसे कि भगवान प्रकट हुए खाने का शिपु के रूप में, क्या कारण है भगवान को ये रूप ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार के वर दे दिए थे और अपने भक्त को उठा रहे थे वरों का पालन किया जाए। पापा जी इसमें लक्ष्य दे रहे थे लॉस एंजल्स में इस विषय पर, ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, भगवान ने जो ये भगवान ने इसका मत किया, उसके पश्चात भगवान ने कहा ब्रह्मा से, ऐसे वह भविष्य में मत देना, मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के जीवन में अनेक प्रकार के वरों को पाया था। तो परम भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं और जो अवतार हैं उनका वर्णन शास्त्र में है। परम भगवान प्रकट होते हैं अनेक रूपों में, और नृसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए कहते हैं आधे पुरुष और आधे पशु के रूप में। कोई सोच सकता है कि भगवान प्रकट हो सकते हैं आधे पुरुष आधे पशु के रूप में, कोई नहीं सुन सकता। पर भगवान अपने आप को इसी रूप में भी प्रकट कर सकते। आगे अद्य पुराण पुरुषम, भगवान है क्या? सबसे पुराने, सबसे पुराने पुरुष। पर देखते हैं कैसे, बूढ़े देखते हैं। अरे कभी भगवान को देखा है तो फिर बालों के साथ, कभी देखा है भगवान जो है चश्मा पहनते हैं या तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं अद्यम पुराना पुरुषम, आप हो सबसे पुराने, आप हो सबसे पहले पुरुष। और तो आप कहोगे सबसे पुराने हैं, अब ये सोचोगे ये बूढ़े होंगे ये होंगे, यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं आप हो सबसे पुराने। अब देखते हो कैसे, बिल्कुल युवक जैसे, वहां हमेश भी बूढ़ा नहीं होता। यहाँ ब्रह्म जी भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक में यह स्थापित किया जा रहा है भगवान प्रकट होते हैं अनेक रूपों में, और इसे क्या कहते हैं। तो भगवान का एक और गुण है अद्य पुराना पुरुषम, सदा वो देखते हैं कैसे युवक जैसे। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, विदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्त, आप अगर भगवान को समझना चाहते हो तो क्या है मार्ग। भगवान यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं विदेश दुर्लभम, वेदों के द्वारा समझने का प्रयास करोगे ये समझ है, अगर आप सेवा के माध्यम से फिर ये संभव है। यहाँ कहा जा रहा है भगवान के अनेक रूप हैं, और भगवान को अगर आप समझना चाहते हो तो क्या है माध्यम, सेवा के, सेवा के माध्यम के द्वारा। अगर आप केवल ये शास्त्रों को अध्ययन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करोगे ये समझ दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्त, जो भक्त मेरी सेवा में जुड़ता है वो मुझे समझ सकता है। तो परम भगवान ने आपको पृथ्वी पर प्रकट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे जब भगवान प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे अपने दिव्य रूप में चार हाथों के साथ, जब माता पिता ने कहा साधारण बच्चा का रूप ग्रहण करो, क्योंकि उनको भय था कि हम इसको स्कूल नहीं पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपने आप को साधारण बच्चे जैसे प्रकट किया। तो आज के श्लोक में आप भगवान के अवतारों की महिमा समझते हो। अगर कोई व्यक्ति हमसे दावा करे कि हम अवतार हैं, आप उनसे पूछिए आप अवतार हो तो आप भगवान की किसी लीला की नकल कर सकते। एक जब हम एक सभा में थे और वहाँ एक बड़े स्वामी जी थे, स्वामी जी ने कहा अपने प्रवचन में कि उन्होंने कहा हमें भगवान है, हम तो भगवान है। उनसे पूछा गया आप कोई दिव्य लीला पकड़ कर सकते हो, तो कोई भी लीला वो कहने लगे आज नहीं पकड़ कर सकते, ये मतलब नहीं हम कल नहीं कर सकेंगे। तो प्रभा जी कहते थे हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, हमें पूछ लेते चेक से थे कि आप अभी हमारा सहयोग दो और 40 साल के बाद इसका नतीजा प्राप्त होगा। पर भगवान भगवान प्रकट होते हैं नई रूपों में, यहाँ पढ़ते हो कि भगवान प्रकट हुए भगवान के रूप में असुरों का वध करने के लिए। भाई कौन से असुरों का वर्णन किया जाए, हिरण्यकश्यप। अगर हमें दो भाइयों के विषय में साधारण व्यक्ति से पूछे कि कौन है ये दो भाई, असुर वो असुर है यार, एनिमी वो असुर है, पर क्या थे भगवान के उत्तम कोटि के भक्त। जब कुमारा है कौन, कमल जी के पुत्र, तो कुमारा को ये भगवान ने ये कहा था, कुमारा जो है उनके पिता ने कहा था रिवाइज करके दान पैदा करो। कुमार जो है कोई रुचि नहीं थी इसमें, उन्होंने अपने शरीर को बड़े होने से रोक दिया। ये जो कुमार है ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गए, अर्जुन धाम। अर्जुन धाम में पहुंचे तो कुमार जो थे 6 द्वारों से निकल गए थे, पर जब सादे द्वार पर पहुंचे वहां के जो द्वारपाल थे, क्या था उनका नाम, उन्होंने कहा तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने तो महाराज को इतना गहरा आनंद अनुभव हो रहा था जब उन्होंने देखा कि उन्हें रोका जा रहा है भगवान के दर्शन को प्राप्त करने। उन्होंने क्या कहा, तुम जो नहीं जा सकते क्यों, क्योंकि उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे। महाराज ने श्राप दिया किसी जय हो जाएगा, तुम यहाँ तुम योग्य नहीं हो, इस योग्य नहीं हो क्या यहाँ खड़े होने के लिए। तो जो जय विजय उन्होंने क्या कहा, अगर आप हमें श्राप देना चाहते हो दीजिए, पर एक विनती है, अब हमें श्राप दीजिएगा हमें हमेशा क्या भाव है भगवान का स्मरण करना चाह रहे हैं। कोई भी सजा दे दो तो भक्त है वो सजा से भी ऐसा नहीं है। कुमार ने कहा विजय ने कहा हम श्राप देने दो, ऐसा श्राप दो कि हम हमेशा क्या कर सकें, वाणी का स्मरण कर सके, तो भाग था उसकी इच्छा क्या है भैया, हमेशा भगवान का स्मरण कर सके। मना बाबा मत भक्तो मंदिर जी मैं नमस्कार करो हम भगवान श्री सत्यम दे पति जी ने पीयूष में शास्त्र में पढ़ते हो भगवान कह रहे सर मेरा चिंतन करो मेरा भगवान। तो जय विजय ने क्या इच्छा प्रकट की, श्राप देने से वो डरे नहीं थे, उन्होंने कहा हमें केवल ये सुविधा देना कि हमें हर जन्म में कौन याद है भगवान का नाम स्मरण कर दिया, तो ये थी उनकी इच्छा। तो फिर उन्हें ये छूट थी, आप तीन जन्म प्राप्त कर सकते हो असुर के रूप में और सात भर जन्म ले सकते हो भक्त के रूप में। तो जय विजय थे, उनकी इच्छा क्या थी, अगर कष्ट देना तो दीजिए पर हम जल्दी से जल्द क्या चाहते हैं भगवान के धाम वापस दौड़ना चाहते हैं, ये था उनका भाव। तो परम भगवान जो है अपने हमको अनेक रूपों में पकड़ लेते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कल्पना है, जैसे आधुनिक के बात ही लोग भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे संभव, जब अंग्रेजों का राजा था कई अंग्रेज स्कॉलर भारत में आए, उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, फिर उन्होंने इन ग्रंथों का अनुवाद करने के साथ क्या क्या ये विचार प्रकट किया कि ये सब सिद्धांत जो है माइथोलॉजी है, ये असलियत नहीं है। क्योंकि अगर आप सिद्धांत व्यक्तियों को भगवान प्रकट हुए थे आधे पुरुष आधे पशु के रूप में, विश्वास नहीं करेगा। एक समय हमारा इसको कोर्ट केस था अमेरिका में, तो सामने की पार्टी कोर्ट में भगवान की तस्वीर लाए और कहा दिस इज ए गॉड माई लॉर्ड, इनका भगवान है आधे पुरुष आधे पुरुष, और बहुत लोगों ने क्या कहा ये माइथोलॉजी है ये समझ लिया, कोई वही ये भूल जाते हैं क्या भगवान अपने आपको किसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। और भगवान उनके विस्तारों का वर्णन है कहा शास्त्र में। तो जय और विजय, जय और विजय का जब वर्ताप चल रहा था हाँ कुमार के साथ, तो परम भगवान ने सुन लिया था कि वर्ताप, तो भगवान आए और अपने भक्त जय विजय से चर्चा करे। जब कुमार ने देखा कि जय विजय का कितना गहरा संबंध है भगवान के साथ, मुझे लगा कि हमने गलती कर दी है, श्राप देकर इतने प्रिय भक्त हैं हम ये श्राप को वापस लेना जा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं मेरी इच्छा है तो मैंने श्राप दो, भगवान की इच्छा क्या थी, भगवान चाहते थे पृथ्वी पर आकर अपने दिव्य लीला को प्रकट करें, वो दिव्य लीला प्रकट होती कैसे था भक्तों के सारे। तो परम भगवान जो है अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तों, आप उनको भगवान को समझ कैसे समझ सकते हो भक्ति योग सेवा के बारे में। यहाँ कहा जा रहा है भगवान के जो अवतार हैं वो अनलिमिटेड हैं और आदि पुरुष गोविंद आदि पुरुष भगवान कहते हैं, भगवान कौन है आदि पुरुष सबसे पहले इंसान। कई लोग कहते हैं अगर भगवान इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, भगवान के कॉज कौन है, इसमें कोई कारण बन सकता है? नहीं। इसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हाँ, गोविंद महादि पुरुषम तुम्हारा हो जाओ, आप जाओ पहले इंसान। परम भगवान के विषय में अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहे, हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के माध्यम से। और भौतिक समाज में आप देखते हो कि हम किसी न किसी को पूछते हैं, जैसे कि जो कई मिश्रा के फोटो को लगाते हैं, कई खिलाड़ियों की फोटो, कई का हीरो कोई स्पोर्ट्स स्टार बन जाता है। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के भक्तों को स्वीकार करते हैं। किस रूप में? उनके प्रति उनकी श्रद्धा होती है और वह आकर्षित होते हैं कैसे अनेक भक्तों के साथ। जैसे कि आप यहाँ प्रहलाद महाराज की महिमा पढ़ रहे हो और 44 के में आप पढ़ते हो किसकी महिमा? गुरु महाराज की। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान और उनके अवतारों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रीमता स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण यहाँ भागवतम के प्रथम स्कंध में कहा गया है। प्रभा जी इस श्लोक का उपयोग करते हैं अर्पण में। श्रीमद स्वागत है कृष्ण। हम कृष्ण भगवान की अनेक लीलाओं के विषय में सुनोगे क्या होगा? जैसे कि जो मेल है दूर हो जाएगी और भगवान को परम भगवान को समझना कठिन है और आसान भी है। भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? देवी शक्ति माई मम माया विरोध। इस माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है पर मामे मामे जो आया दम कर देते। जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है क्या वो इस भक्ति योग को पालन कर लेता है। तो परम भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करें और भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यप, भगवान प्रकट हुए थे उन्होंने भगवान के अनेक असुरों का वध किया। तो परम भगवान के लिए कोई कार्य भी संभव नहीं है और भगवान के अनलिमिटेड क्या है भाई जो है वो आनंद उठाते हैं किसने भगवान के उनके भक्तों की लीलाओं की चर्चा करके। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही जब प्रकट हुए थे वो किस विषय की चर्चा कर रहे थे? भगवान के ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज भगवान के अनेक भक्तों के विषय। तो परम भगवान के जो अनेक अवतार हैं वो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? अवतार के रूप में धर्म की स्थापना करेंगे। हमें भगवान के अवतारों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहाँ से? भगवान के भक्तों के द्वारा। भगवान के भक्तों के द्वारा आपको यथारूप ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान जो है अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं और भगवान के जो भक्त हैं भगवान के अनेक अवतारों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहाँ से? शास्त्र के द्वारा। शास्त्र का अर्थ क्या है? भगवान की वाणी। शास्त्र का अर्थ है वो ज्ञान जो कि भगवान से प्राप्त होता है। साधारण ज्ञान में कमियाँ हैं, भगवान के ज्ञान में कोई कमी है? आज भी आप गीता पढ़ते हो जिसका उच्चारण 5,000 साल पूर्व के और गीता वहाँ क्या कह रहे हैं? मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे? सूर्य के देवता को। तो परम भगवान अपना विस्तार करते हैं और उनके लिए कोई भी रूप ग्रहण करना कठिन है। तो भगवान प्रकट हुए अनेक अवतारों में किनका वध करने के लिए जाने का भगवान बोर के रूप में प्रकट हुए थे किसका वध करने के लिए हिरण यक्ष का। भगवान सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए थे किस लिए हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए थे। ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे हिरण्यकश्यपु क्या सोच कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता भगवान को प्रकट होना पर किस रूप में सिंहदेव के रूप में उन्होंने हमारे द्वारा जो वर लिए थे सबका पालन किया और ज्ञान कश्यप का मालूम तो परम भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और परम भगवान प्रकट होते किस लिए भक्तों की सुरक्षा के लिए। तो भक्त जो है भगवान के भक्तों की लीलाओं में रुचि लेते हैं कृष्ण कथा में रुचि लेते हैं। आप इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा हे प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा तो मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। प्रहलाद ने कहा हे भगवान जो सेवक भगवान से भक्ति के बदले में उसे कुछ लाभ उठाना चाहता है वो असली सेवक नहीं है। क्या है मनुख बिजनेसमैन हम बहुत सौदा कर रहे हैं हमें सेवा करेंगे उसके बदले में हमें ये लाभ चाहिए। और जो स्वामी ये सोचे कि जो कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे ये लाभ मिलेगा वो भी असली स्वामी नहीं है। तो फिर प्रहलाद ने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मेरा हर प्रकार का भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाए। भगवान ने तो कहा मांगो जो वर चाहिए मेरे से। और प्रहलाद ने क्या कहा अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो अभी मुझे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए पर अगर वर देना चाहते हो क्या वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। ये होना चाहिए उसका भाव कि अगर वर चाहिए तो क्या वर चाहिए जिसे हमारे भौतिक आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाए। चौथे स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते ध्रुव महाराज को भी अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े और भगवान ने कहा ध्रुव मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा मांगो में से क्या वर चाहिए। ध्रुव ने क्या कहा ध्रुव ने कहा हे भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए मुझे उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त हो क्योंकि उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त हो होगी क्या प्राप्त होगा उसके या इसके पालन से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। परम भगवान है भगवान के में किसी प्रकार का दोष नहीं किसी प्रकार की कमी नहीं। परम भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं और इनको समझने के लिए मार्ग भक्ति योग योगी के उपाय है। तो परम भगवान के विषय में हमें चाहिए इसके द्वारा भगवान के भक्तों के तो समाज में आप देखते हो कि लोग अपना भाव और देते हैं भगवान की शिक्षा को। भगवद गीता या था कई बार लोग पूछते हैं कि भगवद गीता यथ रूप में नाम क्यों लिया जाता है? प्रभा जी भूमिका भूमिका में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपदेश दिया गया है उसी विचारधारा से, जिस विचार से भगवान ने दिया अर्जुन ने स्वीकार किया। प्रभा जी ने अपना भाववाद नहीं जोड़ा, ने जिस प्रकार भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन ने स्वीकार किया उसी भाव से दिया, इसलिए इसका नाम है भगवद्गीता यथारूप। तो परम भगवान के अनेक अवसर है, भगवान मछली के रूप में भी प्रकट हो गए थे और भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परम भगवान प्रकट होते हैं कहाँ से? भगवान के दिव्य धाम में, जन्म कर्म चा में भगवान कहते हैं मेरा जन्म लेना प्रकट होना और प्रकट होना उनमें क्या है? दिव्य दिव्य कहते हैं जिसमें कोई भौतिक भाव नहीं हो, क्योंकि प्रकट होते हैं भगवान के दिव्य धाम से वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। तो इनको समझने के लिए क्या आवश्यक है? भगवान क्या कह रहे हैं? अथा श्री कृष्ण नमा देना फिर प्रेम नहीं आए से वो मुख्य ही जगत। परम भगवान को अगर आप अपने भौतिक इंद्रियों से समझना चाहते हो समझ सकोगे नहीं। जैसे कि कई संस्कृत के पाठ सुनाए हैं वो हम देखते हैं कि कई लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं पर उनमें भक्ति का भाव नहीं था, भगवान को पूरे रूप से नहीं समझ सकते। तो परम भगवान को समझने के लिए क्या आवश्यकता है? भक्ति योग के मार्ग ब्रह्मा भूत प्रसन्न आत्मा जो व्यक्ति इस मार्ग में जुड़े हैं उनका क्या है? सदा आनंद है, प्रसन्न आत्मा और नो लिमिटेशन नो हैंग। भौतिक समाज में हम ये सोचते रहते ये हो गया है पर ये हम सोचते रहते हैं एक तरह से लेमेंट एक तरह से हैंग। हम लेमेंट करते हैं जो चीज पास हो गई है पर हमेशा कहते हैं कि इसके लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ। भाग का जो भाव है वो उसका क्या भाव है कि मैंने इतना समय दुरुपयोग किया है समय का, अब मुझे इसका उपयोग करने दो किस लिए? भगवान की सेवा में। और भाग का भाव होता है एक पल का भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। पन्ने ने क्या कहा? शिक्षक पूछा था एक ओपिनियन लबया सर ने पूछ ली कि उन्होंने कहा कि हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो क्या अरे विश्व के धन से नहीं प्राप्त कर सकोगे। एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ने कहा मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं बाजिया जानिया शून्या पीछा, मनुष्य जीवन तो मैंने प्राप्त कर लिया तो मैंने राधा कृष्ण की उपासना नहीं की, मैं क्या कर रहा था? जहर पी रहा था। आज समाज की स्थिति यह है लोग तो जहर पी रहे हैं, अब जाके उनसे कहो कि जहर है हम आपको अमृत दे रहे हैं, कहेंगे नहीं हमें जहर पीने दो। ये है समाज का दुर्भाग्य। आज आप देख रहे हो पूरे संसार में क्योंकि पाप का बोझ बढ़ते जा रहा है, अब क्या देखते हो कि जो समस्या है क्लेश है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस अध्याय में आप पढ़ते हो किस प्रकार जय विजय प्रकट हुए असुरों के रूप में, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे अपने क्रोध की लीला प्रकट करें इसके साथ अपने भक्तों के साथ। तो भगवान के स्थानों विस्तारों का वर्णन कहाँ है शास्त्र में? आप देख सकते हो कई बार तीर्थ के स्थानों में जाओ और हर एक व्यक्ति अपने नाम के सामने क्या जोड़ते हैं, भगवान। पर ऐसे भगवान है उसके विषय में परसमुनि क्या कहते हैं, ईश्वर आशिया हमारे वी ऐसा ईश्वर ज्ञान मेरा क्या हो जाए वह भगवान, वो है अवतार। वो भगवान में छह प्रकार के गुण होते हैं असीम मात्रा में, ऐश्वर्य सबसे धनी भगवान के माने द्वारका में हर पति को विशाल महल दिया था जो कि सजा हुआ था गहनों के साथ। वीरेशा सबसे बलवान, भगवान के लिए कोई खाया संभव नहीं है, वीरेशा सबसे बलवान। ज्ञान उनके पास जो ज्ञान है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए गीता जो ज्ञान वैदिक शास्त्र में, वैसा ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञान है शरीर की सबसे ज्यादा शक्ति भी है। और भगवान हिमालय पर्वत को उन्हें उठा लिया था कठिनाई से, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो ब्रिजवासी थे वो पहाड़ के चिड़े, वो ब्रिजवासी आगे देखे थे गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ने उठा लिया था उस पर्वत के नीचे। पर ब्रिजवासी देखकर कह रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये बड़ा पहाड़ गिर नहीं जाए बच्चे के ऊपर। भगवान क्या बस ये हिलेगा नहीं और गिरेगा नहीं मेरे हाथ में। पर भगवान शब्द उसके लिए उपयोग करते हैं इसमें कि छह प्रकार के गुण, और वो सबसे प्रसिद्ध है। भगवान को हर व्यक्ति जानता है और सबसे बहुत समाज में अब वो धनी व्यक्ति मिलेगा सबसे धनी, तो उसमें उतनी शक्ति ना हो सूरत ना हो। पर तो भगवान शब्द से हम उनके लिए उपयोग कर सकते हैं छह प्रकार के गुण हो सही मात्रा में। तो इस श्लोक के द्वारा सबसे पहले ये प्रस्थापित किया जा रहा है क्या कि भगवान उनकी पकड़ होते हैं और उनका विस्तार होता है, और विस्तार भी क्यों होता है सुरों के वध के लिए। और भगवान अपने आप को अनेक रूपों में पकड़ लेते हैं। भगवान को समझने के लिए क्या है माध्यम, सेवोमुखी। और सेवा की भावना कैसे आराम होती है इसके द्वारा श्रवण। जिस प्रकार आप मकान बना रहे हो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, उसी प्रकार हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है क्या करना चाहे नाम को हरे खरे नाम रूप कृष्ण होता। भगवान इस कलयुग में प्रकट होते कैसे कैसे प्रकट होते हैं उनके नामों के द्वारा। तो परम भगवान को समझना चाहते हो तो हमें सेवा की भावना से जुड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोग ने भक्ति सिद्धांत जी का अविभाव मनाया था। भक्ति सिद्धांत जी के अनेक गुणों में एक एक गुण यह था कि वो मायावादियों का बहुत मायावादी के प्रति बहुत क्रोधित थे। मायावादी जो थे इधर डरते थे भक्ति सिद्धांत जी बाई तरफ चल रहे हैं वो दाहिने तरफ हो जाते थे। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का विरोध किया, उन्हें क्या कहा, ये जो मायावती है क्या करना चाहिए, उनकी संगत से हमें बचना चाहिए। तो मायावती सिद्धांत परम भगवान का रूप नहीं है, उसको हमारे संप्रदाय में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। परम भगवान जो है प्रकट होते हैं, वहां भक्त का क्या कहना है भगवान के लिए वो कार्य संभव नहीं। नारद मुनि जा रहे थे भगवान के प्रचार की रिपोर्ट देने के लिए, कहाँ जा रहे थे भगवान के पास, रास्ते में उन्हें एक मोची मिला। मोची ने कहा भगवान के धाम जा रहे हो, पूछना भगवान से मुझे और कितना समय रखना पड़ेगा। वो एक ब्राह्मण नहीं मिला, ब्राह्मण जो था वो क्या था, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ता था पर उनमें पूरा विश्वास नहीं था भगवान के असीम शक्ति में। ब्राह्मण ने भी कहा भगवान के धाम जा रहे हो तो कृपा करके इस प्रश्न को उत्तर लाना। नारद मुनि पहुंचे भगवान के धाम में, उन्होंने ये अपना प्रचार का रिपोर्ट दिया। फिर निकलते समय उन्होंने कहा रास्ते में जब मैं आया था आपके धाम में मुझे दो भक्त मिले थे आपके, उन्होंने ये पूछा उन्होंने कि आपसे पता करूं और कितने समय उन्हें जब मृत्यु के बंधन में पता करना पड़ेगा। भगवान ने कहा मोची को तो बोल देना कि जीवन की समाप्ति में वो भगवान के नाम से जा सकेगा, पर जो ब्राह्मण है उसे कहना कि तुम्हें अनेक और जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे। तो जो ब्राह्मण था और जो नारद मुनि ने पूछा इनका उत्तर, और फिर भगवान ने कहा पर अगर वो पूछेंगे तुम्हारे से मैं क्या कर रहा था जब तुम मुझे मिले, तुम कह देना भगवान ने बड़े हाथी को सूर्य के छेद से निकाले। तो नारद मुनि आए, पहले मिले ब्राह्मण से, ब्राह्मण को ब्राह्मण ने जब सुना अनेक और जन्म प्राप्त करने पड़ेंगे तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुमने ये प्रश्न पूछा, और भगवान ने कहा मुनि ने कहा भगवान एक बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा देखा मुझे पता था आप सच नहीं बोल रहे, कोई बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल सकता है। और जब मोची के पास गए उन्होंने कहा तुम्हें तो इस जीवन की समाप्ति के पश्चात भगवान के नाम लौट सकोगे, वो तो खुश हो गया नाचने लगा भगवान इतने विशाल है। तो फिर नारद मुनि ने मोची की परीक्षा दी, तुम क्या विश्वास करते हो कि बड़े इतने बड़े हाथी को सुई के छेक से कोई निकाल सकता है। तो मोची ने कहा ये जो वृक्ष है जिसके नीचे हम खड़े हैं इसमें ये जो वृक्ष है वो एक बीज से नए और बन जाते हैं। तो भगवान के लिए एक बड़ा पेड़ आयु में तो छोटे बीज में होता है। तो मोची ने कहा भगवान इतने बड़े पेड़ को छोटे से बीज में डाल सकते हैं, उनके लिए हाथी को सुई के छेक से निकालना संभव है। तो फिर नारद मुनि ने कहा अब मुझे समझ आया भगवान ने क्यों मुझे बुलाकर पूछा, वो पूछेंगे मैं क्या कर रहा था क्या बोलना, आदि को श्री के चैतन्य का है। तो पर भगवान का देवी रूप है, वो देवी रूप क्या है प्रभु सदा, तो इसमें कोई दोष नहीं। उनके द्वारा जो ज्ञान भी प्राप्त होता है उस ज्ञान में भी कोई दोष नहीं है। तो इस सेक्शन में आप पढ़ रहे हो भगवान किस प्रकार प्रकट हुए, अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते किस लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए। तो हमें अवतारों को स्वीकार करना चाहिए, कैसे, शास्त्र के आधार पर। जिनका वर्णन नहीं है शास्त्र में उसे हम भगवान नहीं स्वीकार करते। और जब अगर कोई व्यक्ति कहे भगवान के अवतार है, उनसे पूछो आप भगवान की किसी लीला की भी नकल कर सकते हो, और भगवान हर अवतार में वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए थे, उन्होंने भी क्या अपने दिव्य लीला प्रकट की, उन्होंने मतलब सदभुज का रूप प्रकट किया था। तो भगवान जब प्रकट होते हैं वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जिसे आप देख सकते हो कोई साधारण व्यक्ति उसकी नकल नहीं कर सकता। आज के श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि भगवान अपने अपने आपका विस्तार करते रहते हैं, और भगवान के लिए कोई खाई ऐसा नहीं। भगवान विस्तार क्यों करते हैं, वृद्धि वृद्धा पकड़ करने के लिए, अनेक सूरों का वध करेंगे। ये जो सूर है हमें नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत एक वादी है। ये सूर भगवान के शुद्ध भक्त है, और ठाकुर भक्तिनोद जी अपनी एक रचना में कहते हैं कि आप इस सूरों का ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा, आपकी भक्ति ज्यादा मजबूत होगी और आप अनंतर हैं उनसे बच पाओगे। और इन कथा को सुनने के बाद आपका भौतिक आकर्षण नष्ट हो रहा है। तो ये है हमारा उद्देश्य, भक्ति के माध्यम से क्या करें, चेतन पर मान लेना। और भागवतम के विषय में आप पढ़ते हो न सब बड़ेश्वरेश भगवत भक्ति भाई न सब बड़ेश भगवत से हुआ भगवती भगवान के भगवतम को सुनोगे तो क्या होगा, भौतिक आकर्षण हटेगा। तो चैंटिंग एंड रीडिंग, जाप करना और शासन का अध्ययन करना, इसके द्वारा आपका हृदय शुद्ध होगा। तो या पढ़ते हृदय में कि भगवान विस्तार करते हैं, विस्तार का भी विस्तार, और उनके लिए कोई कहीं असंभव नहीं है। और हम अवसार स्वीकार करते हैं कैसे, शास्त्र के आधार पर। जो जो ज्ञान शास्त्र में है उसी को हम स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? देर हो गई है। ओके, वन क्वेश्चन विल टेक। यस, यस, लेट हो गया, सॉरी।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज इतने सुंदर प्रवचन के लिए। महाराज जी आपने जो कथा बताई थी ब्राह्मण की और मूछी की, तो वहाँ पे मूछी में बहुत ही विश्वास था और ब्राह्मण में बड़े ही शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, लेकिन वो इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो महाराज इस विश्वास को इस स्तर तक कैसे लेके आ सकते कि जो शास्त्रों में कहा है कि वो शत प्रतिशत सही है, ऐसा विश्वास। शास्त्रों के ऊपर विश्वास किस तरह से वो एकदम से
पढ़ोगे तो रुचि भी बढ़ेगी आपका विश्वास भी बढ़ेगा। पर जैसे कई बार लोग पूछते हैं हमें रुचि कैसे बढ़ेगी, हमें रुचि बढ़ेगी तो हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो। इसी प्रकार शास्त्रों की रुचि बढ़ेगी अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे।
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि चार कुमार जब गए थे वैकुंठ धाम में, हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज जी जैसा कि आपने बताया कि जय विजय गए, चार कुमार गए थे वैकुंठ धाम में तो उन्हें जय विजय ने रोक लिया, पर जैसे कि हम समझते हैं कि वैकुंठ धाम में ऐसे कोई जा नहीं सकता, उसके स्पिरिचुअल बॉडी होनी चाहिए और वो एलिवेटेड होना चाहिए, तो वैकुंठ धाम में जय विजय को क्यों नियुक्त किया है एज अ द्वारपाल, क्योंकि वहां तो जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल शायद, तो क्यों वहां पे ऐसा बैरियर है?
भगवान के भक्त है, सेवा करते हैं भगवान की, जैसे कि भगवान को भूख थोड़ी लगती है, जब भी ईश्वर माता है वो चिंता रहती है, तो हमने तो जय विजय भी उसी प्रकार भगवान की सेवा कर रहे थे और
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जो कहते हैं उसमें जो राम है वो रामा है, राम है, राम है, क्या है, तो आप बता सकते हैं?
राम से भगवान राम भी वर्णन है, बालराम जी का भी वर्णन है। आप जब महामंत्र का उच्चारण करते हो साथ में राम जी का भी उच्चारण कर रहे हो, राम का और बालराम का भी
जी। गुरु महाराज जी, और जो हम बोलते हैं महाराज जी राम मा है या राम मा है, आजकल लोग बहुत इस पे प्रश्न पूछते हैं कि इस्कॉन तो बाहर से ऐसे करके कि राम बना दिया इन्होंने, राम है या रामा है?
आप राम बोलो, और राम बोलोगे तो अपराध नहीं है। यस,
हरे कृष्ण।
आई थिंक आई विल स्टॉप बिकॉज।
हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज आप बता रहे थे जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को देखकर मायावादी अपना रास्ता बदल लेते थे, लेकिन हमें कई बार प्रचार की सेवा के लिए विशेष रूप से जब हमें धन मांगने हम जाते हैं, अलग अलग वीआईपीज वगैरह होते हैं, तो उनका अपना ही विचार होता है, तो वो भगवान के बारे में कई बार अपना विचार प्रस्तुत करने लगते हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें ठीक करना चाहिए या कैसे हमें आचरण करना चाहिए? जिन बड़े लोगों के पास हम जा रहे हैं महाराज धन मांगने मंदिर के लिए,
बड़े बड़े धनी लोगों का एक कमी यह है कि वो अपने ज्ञान के पर बड़ा गौरव रहता है, पर भगवान को लेकर समझना चाहते हैं तो क्या है, सेवा। जो बड़े लोग सोचते हैं पैसा है तो हमारे विचारों से हर चीज होना चाहिए,
तो महाराज हमें उन्हें ठीक करना चाहिए फिर उस समय पे?
आप प्रचार करो, आप कहो कि ध्यान का मतलब है भगवान की वाणी, तो आपके जो भाव है वो शास्त्र बताए नहीं है, वही सत्य सिद्धांत है, बोलो पर मिठास के साथ।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने बताया कि जब सेवा करते हैं तो उस समय हमें कोई भौतिक आसक्ति या फिर उसके बदले में हमें कोई भाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा प्रहलाद महाराज भी चाहते हैं कि एक व्यापार हो गया, तो सेवा करते वक्त हमारा भाव क्या होना चाहिए?
भाव ये होना चाहिए हमें भगवान की कृपा से सेवा का मौका मिल रहा है, हमें सेवा को पालन करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम सेवा से बचना चाहते हैं, हमें उत्साह होना चाहिए सेवा करने का।
हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न इनसे थोड़ा मिलता जुलता ही है पर थोड़ा सा भिन्न है। जैसे आपने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है और उसके पश्चात वो उनसे कुछ मांगता है तो वो चीज ठीक नहीं है, वो व्यापार में आ गया, लेकिन यदि मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो अगर वो ईश्वर से व्यक्त करते हैं तो क्या वो सही है कि
और उसकी क्या कहते हैं
आशा करना कि वो पूरी होगी वो सही है चीज की नहीं?
भगवान क्या कहते हैं, चार श्रेणी के व्यक्ति में ही शरण में आते हैं, चतुर्दा बजाने में चार श्रेणी के, एक धन चाहिए, दूसरा केवल ज्ञान है, तीसरा जो तीसरा केवल ज्ञान है, चौथा लोगी पूरे। तो भगवान कहते हैं चार परिस्थितियों में वो मेरे ईश्वर में आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन है वो ज्ञान के नाम पर। देवताओं के विषय में भगवान ये कहते हैं कि जो वर देवता से दे रहे हैं मेरे से प्राप्त होता है, मेरे ईश्वर में आओ, तो चाहे कुछ भी कारण हो भगवान पर भगवान की सेवा में जुड़ो। जैसे ध्रुव महाराज उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की थी, इसलिए इच्छा थी कि महान राज्य प्राप्त हो, पर मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर बन गए। ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान ने कहा मांगो जो मांग है, ध्रुव ने कहा निकला था किसके टूटे शीशे की खोज में, मुझे क्या प्राप्त हो गया हीरा। ओके ऐसे भी जो स्टॉप ना हो, कोई वन क्वेश्चन भक्त सब बाहर खड़े हैं प्रसाद के लिए, हम पूछे जल्दी
हरे कृष्णा महाराज जी। आपने बताया कि जैसे हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारा भौतिक आकर्षण कम होगा, नष्ट होगा, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे जीवन में तो कभी भौतिक आकर्षण बीच बीच में आ जाता है, हम पहले उत्साह होके करते हैं फिर बीच में डाउन हो जाते हैं फिर उसको उत्साह करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं सतत कीर्तनम, निरंतर हम उसी फ्लो में चलेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगी फिर बीच बीच में डाउन होते रहेंगे तो?
बीच बीच में डाउन क्यों होते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं, वहां पे हम ढीले हो जाते हैं साधना में, साधना में जब ढीले हो जाते हो बहुत ही आकर्षण पड़ जाता है, तो उपाय क्या है कि आप साधना में ढीले मत बनो, आप नियमित रूप से सावधानी से इनाम का उच्चारण करो, भक्ति का पालन करो, या ज्यादा ऊंचा हो गया, स्टे हाई फॉरएवर। ओके
हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे अगर हमें कोई सीवियर बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार हमें किसी मायावादी से अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाता है, जो हमें लगता है कि कुछ विचार मायावाद के भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन हमें सुविधा फील हो रही होती है, तो क्या हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए?
कि आप मान लो एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो डॉक्टर मायावादी है, आप उसके पास शिक्षा लेने थोड़ी जा रहे हो, आप इलाज कराने जा रहे हो, तो आप गाड़ी में जाते हो, आप पूछते हो ड्राइवर तुम्हारा क्या चलाता है, ओके सॉरी सॉरी हरे कृष्ण।